यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी शोदानंदन व्रज जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदा यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदान जामुना तीरवन चारी जमुना तीरवन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राधा वृंदावन चंद राधा वृंदावन चंद राधा वृंदावन चंद राधे जय राधा वृंदावन चंद गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 परमहंस परिव्राजकाचार्य डिवाइन सरस्वत श्री श्रीमद वज्रनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तविंद की जय। ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय की जय। श्रीमद भागवतम की जय। निधाय गौर हरि ब्रह्मनंदे अम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 26 श्लोक संख्या 25। भद्रं न ते वीतिलकं मलिनं विहर्षं शरंब भीमम अविमृष्टम अपेतरागम वक्तं न ते वीतिलकं मलिनं विहर्षं शरंब भीमं विमृष्टं अपेतरागं पश्येस्तनावपि सुचो अपहतो सुजातो बिंबाधरम विगत कुमकुम पंकरागं वक्तं न ते वीतिलकं मलिनं विहर्षं सदम्ब भीमं विमृष्टम् अपेतरागम् पश्येस्तनावपि सुचोपहतो सुजातो बिंबाधरं विगत कुमकुम पंकरागम् भक्तं न ते वीतिलकं मलिनं विहर्षं सदा भक्तम मुख ना कभी नहीं ते तुम्हारा वितिलकम निरलंकृत मलिनम मलिन विहर्षम खिन्न सदंभ क्रोध से युक्त भीमं भयंकर अभिमृष्टं कांतिहीन अपेतरागम स्नेहशून्य वस्ये मैंने देखा है स्तनों तुम्हारे स्तन अपि भी सुचाऊ बहतो तुम्हारे आंसुओं से सिक्त सुजातो इतने सुंदर बिंबाधरम बिंब फल के समान लाल होष्ठ विगत रहित कुमकुम पंक केसर के रांग रागम रंग अनवर तात्पर्य श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा प्रिय आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा और नहीं मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा है नहीं मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्र अश्रुओं से सिक्त देखा है और नहीं मैंने तुम्हारे बिंबों के बिंबा फलों के समान लाल लाल ओटों को कभी लाली मां से रहित देखा है। तत्पश्च प्रत्येक स्त्री तिलक तथा सिंदूर लगाने पर अत्यंत सुंदर लगती है। जब स्त्री के ओट लाल केसर या सिंदूर से रंजित होते हैं तो स्त्री अत्यधिक अत्यधिक आकर्षित लगती है, किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो ये खिन्न तथा कांतिहीन लगते हैं, जिससे मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी कोई लाभ नहीं उठा पाता। अमज्ञानतिमिदंधस् ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवश्नवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखन्वित मुखम करौति वाचालं पङ्गुमलङ्गयटगिरिं यत्कृपातमहमन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनदिनतारिणं जयतां सुरतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो सिद्धार्थमदनमोहनं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो हम लोग जो निर्मत्सर जीवों के लिए उपयुक्त ग्रंथ हमारे जैसे मस्तक शास्त्र युक्त जीवों के हाथ में श्री प्रभुपाद महा ने रख दिया है। ये उनकी महत्व कृपा है। हमारे चित्त में काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि होते हुए भी उनके अध्ययन का कुछ अधिकार उन्होंने दिया है। तो जितनी मात्रा में हमारा चित्त श्रील प्रभुपाद महाराज में अनुरक्त रहेगा उतनी मात्रा में हम लोग श्रीमद् भागवतम को समझ पाएंगे। बड़े बड़े विद्वान पंडितों की समझ में भी श्रीमद् भागवतम की बातें नहीं आती है, लेकिन वहीं पर उन काम रागान्वित चित्त भी उसमें साधु की कृपा से अभिनिविष्ट हो सकता है। तो महती कृपा है उन महाभागवत की जो हम लोग को अनधिकारी होते हुए भी अधिकारी बनने का एक उनका कृपा दे करके वो चेष्टा कर रहे हैं कि हम भी उसमें प्रवृत्त हो। तो जैसे आप लोग यहां पाठ करते आ रहे हैं कि किस प्रकार ये पुरंजन की पत्नी उनके कहे बगैर आखेट पर जाने के कारण वो रुष्ट हो गई, और जब उनकी बुद्धि ठिकाने पे आई आखेट करके और तब जाकर के अपनी पत्नी को खोजने लगे, उन सदबुद्धि को खोजने लगे। ये दुर्बुद्धि आ गई थी जो ये सब काम कर लिया, अतः उन सदबुद्धि को वो अन्वेषण करने लगे। तो उनको खोजती हो जब वो मिली तब उनको मनाने की चेष्टा करते हैं, और इन चेष्टा में नाना प्रकार से जिस प्रकार एक स्त्री आसक्त व्यक्ति उन स्त्री को मनाने में जो जो शब्द यूज करते हैं प्रयोग करते हैं, तो उनमें ये पुरंजन पटु था और वो अपनी पत्नी को इस प्रकार कह रहा है कि वक्तम नते वितिलकम मलिनम, कहते तुम्हारे मुख को मैंने कभी इस प्रकार की मलिनता तुम्हारे मुख पर नहीं देखी है, और तिलक रहित मुख को मैंने कभी नहीं देखा है। वस्तुतः जो सौभाग्यवान स्त्री होती है उनके मस्तिष्क में हमेशा सिंदूर तिलक शोभायमान रहता है, कपाल में तिलक और उनके सिंदूर शोभायमान रहता है। इससे जान पड़ता है कि वो एक पतिव्रता नारी है। लेकिन वो अपने पति से रुष्ट होने के कारण वो लगाई नहीं थी, इसलिए ये बोल रहे हैं कि कभी भी तुम कहते विहर्षम सरंभ भीमम, कहते हैं और मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को या तुम्हारे इन मुख पर हास्य नहीं देखा, ये कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आज भी हर्षम कोई हर्ष नहीं तुम्हारे चेहरे पर। हाँ, और उल्टा कहते हैं सरंभ क्रोध और उन भीम भयंकर क्रोध। तो इससे युक्त जो तुम्हारा ये मुख है, तो ये मुख हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भाग्यवान इसका अर्थ ये है कि तुम मेरे साथ खुलकर के बात करो, जो समस्या है उन समस्या और मैं जानता हूं क्या समस्या है तुम्हारी। अपनी बुद्धि को बोल रहा है पुरंजन, सदबुद्धि थी थोड़ी, धर्म में लगी हुई बुद्धि थी, इसलिए उन सदबुद्धि का अन्वेषण करते हुए तो ये इस प्रकार मना रहा है। न पच्चीस नाव अपनी सुचो अपहत सुजात, कभी भी तुम्हारे आंसुओं के द्वारा तुम्हारे स्तनों को भीगते हुए मैंने नहीं देखा है, ये पहली बार है। और ये तुम्हारा जो अदृष्ट है उनको कभी भी मैंने लानी मास से रहित नहीं देखा है, तो तुम मेरे पर कृपा कर, ये सब कुछ लगा ले और जो कुछ भी है हाँ। और तुम बोलते तो हम तुम्हारा माफी मांगते, पैर पकड़ते, जो कुछ भी करते हैं हाँ। लेकिन अब मुझे त्यागो मत, कहने का अर्थ ये है। इसी वीक में ने अगले वीक में उरुर्वा एलगित जो है उनको लेने वाला हूं मैं उधर कुंज बिहारी में ब्रह्मचारियों के लिए। उन एलगित में महाराज पुरुर्वा ठीक उसी प्रकार उर्वशी को बोलते हैं। जब व्यक्ति का चित्त भौतिक आस्तित भोगों में आसक्त होता है तो वो दीन हो जाता है, बेचारा इतना दीनहीन हो जाता है हा? कि वो बिल्कुल हा? ऐसे बड़े सम्राट है लेकिन पत्नी के पास सम्राट नहीं रह सकते, सब मुकुट मुकुट उतार करके चरणों में गिर जाते हैं और धूलि लेते हैं। उसमें केवल आसक्ति ही कारण है। कह रहे तो बाह्य वस्तु है लेकिन इसमें जो इन बुद्धि को अपनी बुद्धि को इस प्रकार वो मना रहे हैं, धार्मिक बुद्धि है लेकिन इस पर भी अव्यवसायित्मिका बुद्धि है, सती नहीं है, उल्टा बुद्धि है। और जिस जिस जीवों के पास ऐसा उल्टा बुद्धि है वो इस संसार में फजीहत में पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी फजीहत होती है उनकी। इसलिए पत्नी अगर भक्तों के पास है तो नहीं के बराबर होनी चाहिए, पहले तो रखे ही नहीं, अगर है तो नहीं के बराबर है ही नहीं ऐसे। इस प्रकार व्यक्ति को अपने घर में रहना चाहिए, एक भक्त ग्रस्त को चाहिए, ये परिवार हमारा है ही नहीं, ये तो भगवान की सेविका है और मेरे पुत्र परिजन जो भी है वो भगवान के सेवक है। ये जो ममता चित्त में उत्पन्न होती है वो ममता फालतू है, उनको त्यागते रहना चाहिए। अगर गृहस्थ को अच्छी तरह से भजन करना है तो फिर इस प्रकार रह करके उनका भजन चलेगा, अन्यथा शक्य नहीं है। एकादश स्कंद में उद्धव गीता में ये सारी बात लिखी गई। बोले ये संबंध कहां तक है, जैसे निद्रा किसी को आती है तो निद्रा टूटने पर जैसे निद्रा वाले उन संबंधियों में व्यक्ति आसक्त नहीं होता है, वो समझता है कि एक झूठ है, उसी प्रकार एक भक्त आत्मा के प्रति इतने जागरूक है कि इसको सपने तुल्य समझते हैं। एक मैं घर गृहस्थी हूं, सपना है, कितना अच्छा है। क्योंकि ये सूत दादा आप्त बंधु संगम पांत संगह, ये जो यहां हम लोग को पुत्र पत्नी इत्यादि जो कुछ भी मिले हैं वो तो रास्ता चलते हुए एक प्याऊ पर जो बटोही नाना मार्ग से आते हुए वटे मार्ग तो वहां पर पानी पीने के रुकते हैं उतना मात्र है ना। जैसे श्री ब्रह्मा जी का एक पलक गिरने जितना समय हमारे पास है ना, इतने समय में हम लोग घर गृहस्थी इतना मान लेते हैं को हो सात सात जन्म का साथ है ना, जिएंगे न खाएंगे न मरेंगे न क्या करेंगे हाँ, वो गाना चालू करते हैं। अभी अभी एक जन्म एक व्यक्ति हमको हाथ दिखा रहा था ट्रेन में, वो बोलते महाराज हाथ देखो, मतलब जरा थोड़ा मजा आ जाएगा। तो मैं हाथ खींचा उनका, वाह ऐसा करके वो हाथ दिया। बोलते तो ठीक है। मैं बोला क्या आप जानना चाहते हो इसमें से? तो बगल में उनकी पत्नी बैठी थी, बोले मेरी मेरा और मेरी पत्नी का संबंध कितने जन्म पहले का है और आगे कितने जन्म चलेगा। मैं बोला बाप रे बाप। मैं बोला एक दिन में 10 बार टूटता है कि नहीं? अब तुम जन्म जन्म बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूं आपका झगड़ा बगड़ा होता है, बोले वो तो होता रहता है ना, बर्तन है तो वो तो दो चार बर्तन है तो वो तो आवाज करेगा, इसमें क्या है। मैं बोला तो दिन में 10 बार तो तुम लोग अलग हो जाते हो और जन्म जन्म का बात कर रहे हो। वस्तु तो ये आसक्ति के कारण होता है। कर संसार की उतनी आसक्ति व्यक्ति को नहीं रखनी चाहिए, भक्तों को खास नहीं रखना चाहिए, अन्यथा भजन चलेगा ही नहीं। और ब्रह्मचारियों के माइंड में भी कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि आगे चल करके हम फंसे, रिक्त उन माइंड से रिक्त होना चाहिए। ये सब उनका माइंड इन सब बातों से एकदम रिक्त होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना, नहीं तो भजन नहीं चल सकता है। क्योंकि खाली चित्त ही भगवान को चाहिए, उनमें कोई नहीं चाहिए। अब सबसे पहले अपना जो खुद का एक आसक्ति है उनको पहले, उस ग्रंथि को, अहंता इसमें है वो ग्रंथि को हम नहीं मिटा सकते हैं, है ना। तो एक दूसरा गांठ क्यों बांधे? क्योंकि दूसरी एक अहंकार वाली कि मैं ये देह हूं और उनके साथ दोनों का विवाह होता है तो एक दोनों के ऊपर एक तीसरा गांठ पड़ता है। और एक बच्चा हुआ, घर लिया तो घर में आसक्त, गांठ पर गांठ चलती है। इसलिए ये जो लोग बचे हुए हैं सदभाग्य से तो वो लोग बचे रहे जीवन में। ये बहुत बड़ा सदभाग्य मानना चाहिए कि इस प्रकार अगर जीवन निकल गया बिना स्त्री, ओ हो भगवत प्राप्ति हो गई। वो मान लिया जाएगा कि इनकी भगवत प्राप्ति हो गई। इतना तकलीफ है गृहस्थ जीवन में। जो लोग गृहस्थ हैं उनको पूछिए, बोले हाथ छोड़, दोनों पति पत्नी एक नहीं दोनों। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष के लिए बात बोल रहे हैं, वो स्त्री भी हाथ जोड़ लिया है। इसलिए कोई योजना माइंड में है तो निकाल दे। सप्रोन बने रहना चाहिए जीवन पर्यंत। ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने स्त्री की आसक्ति को जीत लिया है, अजीत भगवान को उन्होंने जीत लिया है। शास्त्र का वचन है। अगले जीवन में आपको कभी भी मुख देखने को नहीं मिलेगा स्त्रियों का, और अगर है तब भी आपका चित्त में स्त्री की आसक्ति नहीं जाएगी। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं इसको, क्योंकि एक दोष अगर जीवन में छूटा ना, अगले जीवन में वो मिलने वाला नहीं है। कितने भी अपराध कर ले कोई व्यक्ति भक्ति करते हुए, लेकिन स्त्री उनको नहीं मिलेगा। क्यों? उन्होंने बगैर स्त्री वाला एक तपस्वी जीवन बिताया है। खैर, तो ये स्त्री का बड़ा खतरनाक आसक्ति है। लेकिन यहां पर एक जो उपदेश एक अन्य रूप से मिलता है, श्रील प्रभुपाद महाराज एक लाइन लिखते हैं तो वो कहते हैं कि बुद्धि न कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो वो खिन्न तथा कांतिहीन लगती है। जो इस पुनंजन को लग रही है उसमें कोई गलत नहीं, वो लगेगी। वो तो उनका मन सोच रहा है कि मेरी पत्नी बहुत बहुत मुझे प्रेम कर रही है और सदैव हंसती रहती है। वो एक मानसिकता है व्यक्ति का। वास्तविक जीवन में भी एक व्यक्ति की मानसिकता है, ये केवल मानसिकता अर्थात सपना है। इसलिए
जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको सपना नहीं देखना चाहिए, वास्तविकता में जीवन जीना चाहिए, स्वप्न में नहीं। ये जितने भी गृहस्थ लोग हैं या इस प्रकार की योजना वाला माइंड है वो सब कल्पना है, कुछ है नहीं, वो संबंध कुछ है नहीं, वो मान्यता है। तो मान्यता तो मिट जाएगी, है कि नहीं? कोई मान्यता हमारे माइंड में है तो कभी भी मिट सकती है। कहते हैं कि अगर कहीं से कृष्ण भावना भावित बुद्धि मिलती है तो उनको खरीद लेना चाहिए। और देखिए हम लोग तो उस व्यापारी के पास है जो उनके अलावा दूसरा कुछ मिलता केवल है। श्रील प्रभुपाद महाराज के पास कोई पहुंच गया है तो उनके पास केवल केवल मात्र निर्मल मति मिलती है। अगर हमारी नहीं हुई है तभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भक्तों के संग में अति शीघ्र हो जाएगा। साधु संघ अगर हमारा बना रहा तो इनमें कोई देर नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। जीवन में नहीं होगा तो अगले में हो जाएगा, साधु संघ तो मिलेगा ही। जीवन पर्यंत अगर किसी ने, कोई विवेकी भक्त ने साधु संगति में अपना जीवन बिता दिया है तो समझ लो कि उन्होंने लगभग प्राय सभी वस्तु का तिरस्कार कर दिया है। अगला जीवन बहुत सुंदर जीवन, मुक्त जीवन व्यक्ति के सामने है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जीवों को, क्योंकि ये आसक्ति हटाना ये बहुत मुश्किल काम है ना। भक्ति का सहारा लेकर के भी हम चित्त को अनासक्त नहीं कर सकते। अनासक्त जीवन गिफ्ट में मिला तो है ना सबसे बड़ा गिफ्ट। कभी कभी व्यक्ति सोचता है यार 25 साल हो गया, इतना हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मंदिर में जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है और बाहर जो भी होगा वो सब खराब होगा, इसका विश्वास होना चाहिए भक्तों के हृदय में। क्योंकि निर्मल बुद्धि यहां केवल मात्र उनका मार्केट लगा हुआ है, अपनी अपने चित्त को अपनी बुद्धि को निर्मल करो, उस बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। हाथ में आ गई है तो जैसे तैसे बड़े केयरफुल होते हुए उनको देखते रहना चाहिए कि मेरे पास से चली ना जाए। समझ लीजिए कि उन भक्तों के पास वही सबसे बड़ा धन है जो ये निर्मल मति है। कैसे बक्सामृत चंद्र लिखते हैं, कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, करोड़ों जन्म का पुण्य लगाने के बाद भी वो बुद्धि मिलता नहीं है। और यहां तो सामान्य जो भी आता है लो लो लो, ये नहीं देखा जाता है कि कोई कैसा है क्या है। भक्त बनोगे, माला करोगे, ठीक है ना। तो व्यक्ति को उन हाथ में आई हुई वस्तु को बहुत संभाल करके, उनका जतन करके उनको पुष्ट करना चाहिए। अच्छा कैसे होगी वो पुष्ट, कुछ बातें हैं इनमें, और खास करके एक शंकर नामक कवि ने एक बहुत सुंदर श्लोक इसके लिए लिखा है। वो कहते या मुक्तिर लक्ष्मी भुविर कामुका नाम, या मुक्तिर लक्ष्मी ही योग बाजाम, या आनंद लक्ष्मी रसिकेंद्र मौले साक्व अपि लीलावतु माधवस्य। बहुत सुंदर उपाय दिया है। बोलते हैं इस संसार में जो कामुक लोग हैं जिनको नाना प्रकार के भोगों की कामना है तो उनके लिए कहते हैं वो जो भुक्ति रूपी लक्ष्मी है धन संपत्ति उनकी, और जो मुक्ति की कामना वाले व्यक्ति है योग भाजाम, जो योग मार्ग को पकड़ करके मुक्त होना चाहते हैं तो वही मुक्ति रूपी लक्ष्मी, और जो कहते या आनंद लक्ष्मी रसिकेंद्र मौल है, और जो भक्त लोग हैं रसिक है, क्योंकि वास्तविक रस को ये जानते हैं। कहां से वो निकलता है? श्रीमद् भागवतम से। तो कहते ये आनंद लक्ष्मी रसिकेंद्र मौले साका अपि लीला अव तु माधवस्य, बोले आप सबकी उन भावनाओं को भगवान माधव की लीला रक्षा करे। अर्दान जो जो कुछ भी चाहता है हरि कथा उनकी रक्षा करती है। लेकिन बहुत बड़े सद्भाग्य से हम ये देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि ये निर्मल बुद्धि जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो कहते हैं आवत्तु क्या, तो बोलते लीला माधवस्य, भगवान की जो लीला है, इनकी लीला कथा है, उसके द्वारा उसकी रक्षा होगी। तीसरी लाइन हमारे लिए है, यद्यपि हम प्रेमी नहीं है लेकिन ये हमारे लिए, आगे प्रेमी बनना है, भगवान के प्रेमी बनना है, रसिक बनना है। अच्छा, वो रसिक बनने के लिए भगवत कथा में इस प्रकार की प्रीति कैसे प्राप्त हो? तो उनके लिए दसम स्कंद में श्लोक लिखा है, वो कहते हैं क्षणवताम अपेति अरतिर्वितिष्णा, बोलते इसको श्रवण करते हुए जो लोग श्रवण भक्ति करते हैं ठीक ठीक, तो उनकी वो मति का रक्षा कथा करती है, तो कथा वो उपाय स्थिर हुआ। अच्छा, लेकिन अरुचि है तो बोलते हैं कथा सुनते सुनते अपेति अरति, अरति भी चली जाएगी, और ये दूसरा गिफ्ट में दो चार बातें हैं, वो तो गिफ्ट में है, क्या क्या है? तो बोलते हैं अपेति वितिष्णा, विविधा तिष्णा, नाना प्रकार की जो भावना तिष्णा जो हृदय में उठती है अपेति, वो सुनते सुनते चली जाएगी। अच्छा, दूसरा एक बात कहते सत्वम च शुद्धित अचिरेण पुंसः, और इससे व्यक्ति का चित्त निर्मल होता जाएगा। वो बुद्धि की रक्षा है कि नहीं? चित्त निर्मल होगा, जब चित्त में कोई तृष्णा नहीं उठेगी तो बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। अच्छा, तो मान लीजिए कि किसी की बुद्धि बिगड़ी है तो उनका कारण क्या है? साधन का अभाव। साधन का अभाव है ना, तो बोलते नहीं साधु कृपा नहीं मिली इसलिए। अच्छा, साधु कृपा नहीं होती थी तो हम लोग ये मंदिर में नहीं होते थे, भगवान की कृपा नहीं होती थी तो ये मंदिर में नहीं होते थे, मानव जीवन हमारे पास नहीं होता था, छोड़ दो वो दूसरी बात छोड़ दो, भगवत कृपा से किसी को मानव जीवन मिला है ना तो उनको दूसरा किसी भी वस्तु का डिमांड नहीं करना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, भले ही गरीब से गरीब अवस्था में मिले, क्योंकि मनुष्य जन्म उनको भगवान देते हैं जिनके ऊपर उनकी स्पेशल कृपा है, उनको देते हैं। और उसमें साधु संग मिला है हम लोग को, तो और कोई कंप्लेन लेकर के नहीं जाना चाहिए, ये बीमार माइंड है, अगर कुछ कंप्लेन उठता है तो बीमार है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सत्वम तो शुद्धित अचिरेण पुंसः, उन पुरुष का जीवों का अत्यंत शीघ्र ही चित्त निर्मल कर देती है हरि कथा। और कहते हैं भक्तुर हरोर, भगवान में प्रेम भक्ति उत्पन्न करेगी ये हरि कथा। इससे सिद्ध अवस्था में कोई व्यक्ति चला जाता है तिस पर भी तत्रापि श्रीमद् भागवतम श्रवणेन सुष्टु, फिर भी उनको श्रीमद् भागवतम का सतत श्रवण करना चाहिए। यद्यपि लीलाएं दिखाई पड़ रही है कृष्ण की, तथापि भी तत्रापि भी तत्रापि का अर्थ तो पा फिर भी गुजरात से आया मैं इसे गुजराती आ जाते लोग फिर भी लीला दिखाई पड़ती है सिनेमा की तरह भगवान की, लेकिन उनके लिए भी श्रीमद भागवतम जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि श्रवण करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, क्योंकि ये उनको पुष्ट करने वाला है। भवव सद्दो मनो विरामात, जो मुक्त जीव है उनके लिए टॉनिक का काम करता है, उनको तगड़ा करता रहता है, अर्थात उनकी बुद्धि की रक्षा करता है, उन बुद्धि को एकदम तगड़ा बनाते हैं। अगर ये बुद्धि किसी के पास चला जाए तो पुरंजन की तरह रोना चाहिए उस बुद्धि के लिए, अरे ये बुद्धि क्या, एक समय था कि मैं भजन कर रहा था बढ़िया से और कैसी फजीयत में पड़ गया, हे भगवान वो बुद्धि मुझे वापस मिले। और ऐसा होगा ही, क्योंकि कृष्ण भावना को छोड़ करके जाने वाले व्यक्ति अभी तक लटक रहे हैं बीच में, प्रभुपाद जी के डिसाइबल भी बीच में लटक रहे हैं, बोले पता नहीं यार उन्होंने क्या जादू किया है, हम लोग ठीक से भोग भी नहीं कर सकते हैं, नहीं नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, भगवान करने नहीं देंगे, उनमें मति जाने नहीं देंगे, बोले यार ठीक से कुछ भी नहीं हो रहा है, और रह रह करके, और वो लोग चक्कर काटते थे, हरे कृष्ण मूवमेंट का मंदिर है ना अगल बगल में देखा जाता है अमेरिका में आज भी, पुरातन भक्त जो व्यक्ति इस प्रकार उन मंदिर से किसी भी कोई भी इंस्टेंस हो लेकिन वो चले गए हैं, लेकिन वो घूम रहे हैं, अंदर आना भी अच्छा नहीं लगता है और संसार में रहना भी अच्छा, भगवान बीच में लटकाएंगे मजा चखाएंगे बेटा। वो चाटा दिखा करके और बोले इस प्रकार भावना ठीक करते हैं, छोड़ते तो नहीं छोड़ेंगे नहीं, ऐसे इसीलिए जिन लोग के हृदय में आगे योजना है वो लटकने की तैयारी के साथ छोड़े। भगवान तो छोड़ने वाले नहीं है, लटका करके वापस टपक देंगे इधर भक्तों के बीच में, ये जीवन में तो अगले जीवन में आ जाएंगे, लेकिन भोग में उनका बुद्धि लगने नहीं देंगे, इसी को तो पोषणम बोलते हैं, जो छठा स्कंद मैंने प्रारंभ किया है उनको पोषण बोला जाता है। भक्त अपराधी भी है भगवान के, तथापि भी जय विजय को नहीं छोड़ा भगवान ने, तत्पोषणम। इंद्र कितना अपराध किया, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध इंद्र का चला, लेकिन वामन जी सखा के रूप में बैठ गए उनके पास, बोले बहुत ज्यादा अपराध कर रहना पड़ेगा, बार बार आपत्ति में आता रहेगा ठीक नहीं है, भक्त है ना, सोचो अपने गुरु को मार दिया, विश्वरूप को मार दिया, और पृथ्वी महाराज का घोड़ा चुरा लिया, ब्रह्मा जी उनको नहीं समझा रहे हैं, इंद्र को पृथ्वी को समझा रहे हैं, पृथ्वी नहीं कह सकते अरे चोरी वो कर रहा है आप हमको समझा रहे हैं, बोले वो समझने वाला भक्त है ना वो बोलते वो समझने वाला नहीं वो भक्त है ना, लेकिन कच्चा भक्त है अभी पक्का हुआ, पक्का होता तो समझ जाता था एक बात में, तुम पक्के हो तुम समझो इस बात को, ये भक्त नहीं है ये समझेगा नहीं है? लेकिन तीस पर भी भगवान उनका रक्षण करते, देखिए चित्र के तो असुर हो गया रक्षा हो गई कि नहीं, असुर शरीर में भक्ति और भक्तों के शरीर में असुरता रह सकती है, आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य मत माने, भले ही थोड़ा सात्विक गुण किसी का दिखाई पड़ रहा है लेकिन रजोगुण में पलटने में देर नहीं लगेगा, बस केवल संगति का अभाव है, दुसंगति का, जैसे थोड़ी दुसंगति लग गई गए काम से, है ना, लेकिन भगवान है रक्षण के लिए, उनको ही तो पोषण बोलते हैं। देखिए कितने कितने अपराधी व्यक्ति है, इंद्र होकर के इतना गलती करने पर भी, लेकिन तीस पर भी देखो रक्षा होती है। ये पूरा स्कंद छठा स्कंद पोषण है श्रीमद् भागवतम का। भगवान क्या नहीं करते इंद्र के लिए। वो वैदिक वेद से बेचारा राज्य प्राप्त किया था बलि महाराज, उनका वेद ठीक था, जो शास्त्र में लिखा है वो वेद था, मार्ग वही अपना करके, क्योंकि वो जब लड़ाई में मारे गए और मृत संजीवनी पाठ करके उनके गुरु ने जिला दिया बलि महाराज को, तो बलि बोले थैंक यू वेरी मच, वापस मैं युद्ध करूं, बोले रास्ता गलत है युद्ध का, स्वर्ग चाहिए ना, चलो हम यज्ञ करते हैं। और ऐसा यज्ञ प्रारंभ किया बिना युद्ध, बलि महाराज ने कैप्चर कर लिया स्वर्ग को और देवता लोग भागने लगे। लेकिन वामन देव ने क्या किया, जा तो नहीं सकते, सीधा तो ले नहीं सकते थे उनके पास से, इसलिए भिख मंगा बन गए। किसके लिए? इंद्र के लिए। और इंद्र का चरित्र आप देखो जरा, इसलिए किसी को घबराना भी नहीं चाहिए। अगर किसी प्रकार का हृदय में आसक्ति भी है, घबराए बिना अपनी निर्मल मति का रक्षा करें। बस एक काम करना है, जो ये निर्मल मति मिली है ना, उसका कैसे भी प्रकार के हरिनाम के द्वारा, इसके द्वारा भागवतम अध्ययन के द्वारा उनकी रक्षा करके उनका पोषण, उनको तगड़ा बनाता जाए कि वो फंस न जाए उसमें। फिर मनाना पड़ेगा पुरंजन की तरह, कहां खो गई रे मेरी बुद्धि, फिर मनाने के लिए दौड़ेंगे, है कि नहीं? ये काम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते कि कृष्ण भावना ही वास्तव में कांति है। जीव की कांति क्या है? उनकी कृष्ण भावना, उससे वो शोभित होते हैं। वैष्णव लोग की शोभा है उनकी भक्ति से और सद्गुणों से। सुंदर गुणावली जिस भक्त के पास है वो वास्तव में वही शोभा है, कपड़े का शोभा नहीं है, शोभा तो है इन निर्मल बुद्धि का। कितनी मात्रा में भगवान में लगी हुई बुद्धि है उनकी शोभा है, इसी की कांति बोलते हैं। जिससे मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी, अगर मान लीजिए जिनके पास ये हरि भक्ति रूपी बुद्धि नहीं है, उनके पास कितना भी तेज बुद्धि है, कितना भी पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट लाइक मोदी जी है ना, अभी इस वक्त वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बुरा ही है, लेकिन तीस पर भी पुरंजन पुरंजन है, वो पुरंजन है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्मों के द्वारा सबको सुखी करना चाहती है। पुरंजन कहीं के, तो एक पुरंजन नहीं, लाख पुरंजन मिलकर के एक पुरंजन को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ये आइडिया नहीं है उनके पास। सज्जन आदमी है, दुर्जन नहीं है, लेकिन ये तो इससे बड़ा सज्जन है, लोग केवल धार्मिक क्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन अब व्यवसायित्मिका का बुद्धि समाधान विधीयते, कभी भी उनका चित्त भगवान में लग नहीं सकता है, लाख मेहनत करे, क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्वया अपहत चेतसाम, जिनकी चेतना इन भोग ऐश्वर्य के कारण अपहत हो चुकी है, मुझे ये चाहिए, संसार का कुछ वस्तु चाहिए, अव्यवसायित्मिका बुद्धि। तो व्यवसायित्मिका बुद्धि भक्तों के पास है, सुंदर बुद्धि है, उनका लगभग व्यक्ति को चाहिए कि उनके लिए जो कुछ भी लगा दें उनके पीछे लगा देना चाहिए। सबसे मूल्यवान व्यक्ति का आयुष्य है, और आप लोग ने इतना आयुष्य लगा दिया है, तो इसकी हानि आगे नहीं होने देंगे आप 100%। इससे बाकी का आयु है उसी में लगाकर बिता देना चाहिए। होगा कि नहीं होगा उसको छोड़ दो आप, वो निर्मल नहीं हो रही है, हो रही है वह, और इतना साल हो गया नहीं हो रहा है, उनको छोड़ो ना, वो जब होगा तब देखेंगे। लेकिन करना यही है, हमारे गुरु ने बताया है, इसी से मिलेगा, बस खत्म। ब्रह्मा जी भी चार मुख वाले आकर के बोले ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं व्यवसायत्मिक का बुद्धि के लिए, अगर ब्रह्मा जी आकर के बोले ना बेटा ठीक मार्ग नहीं है, बोलते सॉरी आपको नहीं सुनना है, बोले मैं ब्रह्मा हूं, वेद मैंने बोला गया, मेरे मुख से वेद निकला है, बोले आप जाइए। ऐसी निष्ठा, इस प्रकार निष्ठिता बुद्धि, उनका बल बढ़ता बढ़ता जाएगा जितनी मात्रा में हम लोग भागवतम का अध्ययन करते जाएंगे ना, और उनके सार और उनका चिंतन, उन सार वस्तु का चिंतन, उनका मनन करते रहेंगे कि ये अद्भुत अद्भुत बातें श्रीमद् भागवतम में है, और बार बार उनका चिंतन करेंगे ना, वो तगड़ी होती जाएगी बुद्धि, और ज्यादा निर्मल, और इतनी निर्मल हो जाएगी कि आपके माइंड में कोई भी विचार उठा तत्काल उसी सेकंड में आप काट सकते हैं। तो पैनी हो गई ना, इसी मतलब भागवतम को श्रवण करके बुद्धि रूपी खड़ग इतना पैना रखना चाहिए हमेशा धारदार, कोई विचार उठा नहीं खटाक से काटा जाओ, चलना ही नहीं उनके पीछे, विचार के पीछे छर छर काटता चले व्यक्ति, तो पैनी बुद्धि काट सकती है। विचार परायण जो बुद्धि है ना, भागवतम पर विचार परायण बुद्धि, हा एक एक ये विचारों को गलत विचारों को खटखट काटती जाएगी। कभी कभी बिचारे को थोड़ा कभी कभी वो बहिर्गत होती है तो उनको समझा बुझा करके ठीक करना चाहिए। बोले कृष्ण शाश्वत के विषय है, उन शाश्वत विषय भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके इंद्रियों के पीछे भाग रही है क्या, जो अशाश्वत और पाप करनेशु अपनी नरक दे करके जो भोग मिलते हैं उनमें जा रही है, इन शाश्वत विषय को छोड़ करके समझाना चाहिए। शास्त्र में कई सारी उक्तियां है बुद्धि को समझ, वो गोविंद देव का भजन है, भजू हूं रे मन अभय चरणार विंद, दूसरे संप्रदाय के लिए तो ठीक है कि वो अभयचरण भगवान, यहां तो गुरु भी अभयचरण है, कोई भाई नहीं जो उनके पास रहेगा निर्भय होकर के भजन करेगा, है कि नहीं, दूसरे तो बोले भगवान का शरण देखा है कि नहीं देखा, साक्षात अभयचरण है, भजहु रे मन श्री नंदन, समझाना चाहिए, भजन को अप्लाई करते हुए अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए। विषय जे प्रीति, भक्ति नोट ठाकुर गाते ना, बोलते विषय में जिस प्रकार की प्रीति मेरी है, से मत प्रीति हऊक चरणे तुमार, बोले ऐसी प्रीति लंपट लंपट बुद्धि हो जाए, किसमें भगवान की लीला कथा से लंपट बुद्धि कर देनी चाहिए, क्योंकि नित्य सुनी हुई लीला कथा नवीन लगेगी लंपट बुद्धि में, जैसे लंपट व्यक्ति को स्त्री की कथा रोज नई लगती है, वैसे वैसे हरि कथा नवीन लगती जाएगी, क्योंकि लंपट है ना, लंपट्य आ गया है बुद्धि को, धीरे धीरे इन सब बातों से बचा करके लंपट्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, लंपट हो जाए, अत्यंत आसक्ति को लंपटता बोलते हैं। तो सदभाग्य से वो बुद्धि हमारे पास है, पूरंजन की तरह रोना नहीं है हमको, ये पूरंजन रोएंगे उनको रोने दो, लेकिन हम लोग वो पूरन जन से अपने नाम को काट लिया है। पूरम जनयति इति पूरन जन्ना, अपने लिए एक दूसरा देह की सृष्टि, हम लोग तो देह चाहते नहीं दूसरा, नाम बाकात कर लिया है। धन्य है हरे कृष्ण जी। इसीलिए तो मैंने छोड़ दिया 10 मिनट देखा था।
हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर नाइस क्लास। प्रभु जी, जैसे शुरू में आप बोल रहे थे स्पेशली ब्रह्मचारी के बारे में कि जैसे कैसे गुरु के प्रति समर्पण होके भक्ति करना चाहिए और बाहर के अट्रैक्शन से बचना चाहिए,
थोड़ा दूर रखे ना माइक।
तो जनरली ब्रह्मचारी के लिए मतलब जो इस्कॉन में जो उनके लिए एक अट्रैक्शन की जो गृहस्थ दूसरे गृहस्थों को देखते हैं जैसे नियोपाइट ब्रह्मचारी, तो वो एक ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है उनके लिए। वो मतलब सोच सकते हैं कि हम भी उनकी तरह गृहस्थ बने और फिर चेंज करें। तो मैं ये पर्सनल बोल रहा हूँ कि मैं जब भी ब्रह्मचारियों से बात करता हूँ तो मैं हमेशा गृहस्था के बारे में निगेटिव बोलता हूँ। अभी
बहुत अच्छा है
नहीं, तो क्या होता है कभी कभी ओवर भी हो जाता है, ज़्यादा मतलब जरूरत से ज़्यादा। तो एज ए गृहस्था मतलब गृहस्था होके बार बार गृहस्था के बारे में निगेटिव बोलना क्या अच्छा है क्या? मतलब कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि इतना भी निगेटिव नहीं बोलना चाहिए।
बहुत अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। जितना आप बुराई करोगे ना संसार का, उतना संसार आपके दिमाग से चला जाएगा। आप दूसरे का तो निकालेंगे, अपना भी निकल जाएगा। बेनिफिट है, अगर एक के चित्त में से संसार निकल गया ना, आपका शेर रहेगा। 50 को निकालो, रोज बोलो ये कथा। ये कथा रोज बोलने लायक है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है? दूसरा प्रश्न लिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, भक्तों को जो इस प्रकार उनके हृदय में भाव देख करके उन भावों को काटना, माइक भावों को काटना, यही तो भक्त का कर्तव्य है।
और एक दूसरा क्वेश्चन ब्रह्मचारी के बारे में नहीं तो बहुत बार मैंने देखा है कि
थोड़ा आठ दस
जनरली ब्रह्मचारी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि 8-10 साल वो ब्रह्मचारी रहते हैं लेकिन 8-10 साल के बाद वो चेंज कर, जैसे बाहर भी मैं थोड़ा बाहर भी था, उधर भी मैंने देखा कि 8-10 साल के बाद ब्रह्मचारी चेंज करते हैं। तो जनरली अभी जैसे मैं पूछता हूँ, मेरा भाई भी ब्रह्मचारी है दूसरे सेंटर में, तो जब बात करते तो ऐसा जनरली बोलते कि बाद में उनको उनका जो नेचर है वो समझ में आता है, वो टाइम लगता है जैसे। तो मेरा पर्सनली ऐसा, तो मैं बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, जैसे भक्ति हम तीव्रता से करेंगे तो एक उसका गुण है कि एक विरक्ति ज्ञान और वैराग्य, तो वो बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल के बाद किसी को ऐसा लगता है नहीं मेरा तो नेचर गृहस्था बनना था और फिर मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया।
हाँ,
तो
समझ गया पॉइंट आपका। ऐसा इसलिए होता है व्यक्ति के चित्त में, एक तो साधना का अभाव, पहला चीज। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने जो साधना बताई है, उन सारी साधना जिनके जीवन में है वो कभी भी उसकी कमी महसूस नहीं करेंगे, कभी नहीं, आने ही नहीं देगा चित्त में, क्योंकि वैराग्य ही वैराग्य भरा रहेगा। देखो कोई गृहस्थ लगा है ना उनमें, जैसे आपका चित्त, घर में नहीं जाता है, मंदिर में इतना ज्यादा जाता है कि नहीं? जितना चित्त घर में जाता है उससे ज्यादा मंदिर में, वो मंदिर को अपना घर और अपने घर को बाहर दूसरे लोगों के लिए जैसे मंदिर है ऐसा समझता है, वो मंदिर नहीं आते हैं। तो भक्त को चाहिए कि इस प्रकार का आसक्ति पूर्वक अपनी साधना अटेंड करे। देखिए मंगला आरती उठना थोड़ा भारी पड़ता है, वो अवश्य है, लेकिन अगर आकर के कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए ना भगवान के सामने जैसे तैसे भी, और गुरु अष्टक का गान कर लेगा ना, उनको दूसरी साधना एक भी करने की जरूरत नहीं है। विश्वनाथ चक्री ठाकुर आशीर्वाद करते हैं, कि जो प्रातःकाल गुरु अष्टकम केवल गाता है ना, हा? और कुछ नहीं करता है, केवल गाने में है, हा? वो भी तर जाएगा, उनको भी भक्ति मिल जाएगा। हा? भगवान का गुण गाने वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें डाउट है, लेकिन जो भगवान के सामने उनके जन का गुणगान करने वाला व्यक्ति है ना, वो पहले तरता है। इसलिए गुरुअष्टक हमेशा, अच्छा क्यों प्रभुपाद जी ने गुरुअष्टक लागू किया ना, गौड़ी मठ में तो नहीं है, यहां प्रभुपाद जी जानते थे कि मेरे पास जो लोग आएंगे वो एकदम थर्ड क्लास लोग आएंगे, सॉरी आप फर्स्ट क्लास है, लेकिन जो मैं बाहर का बात कर रहा हूं, आप लोग का बुद्धि फर्स्ट क्लास का है, लेकिन प्राय थर्ड क्लास वर्ग आएगा, तो उन थर्ड क्लास वर्ग को कुछ इस प्रकार का योजना देना चाहिए कि वो अपने आप भक्ति में आगे बढ़े। बताइए ऐसा कोई ब्रह्मचारी है जो रेगुलर मंगल आरती आने वाला, जब से ज्वाइंट किया एक दिन भी नहीं सोया है, और उनके दिमाग में विचार आए, अरे हम लोग गृहस्थी थे, इसी को केवल एकमात्र थोड़ा रेगुलर रखे हैं, और तो कुछ नहीं, साधना बनना क्या है, इसी को रेगुलर रखने के कारण एक ऐसा गिफ्ट मिला है कि आज वानप्रस्थ है बढ़िया से। घर को देखते ही नहीं है, फोन बनाता जी कहां है, लेकिन बोले हरे कृष्णा, बोले मर गया है। सबसे पहले फोन देख करके उठाने का इच्छा नहीं होता है, अरे यार कहां। एक दिन एक भक्त के साथ मैं बात कर रहा था, इसी बारे में बात था कि संसार से अनासक्त रहना चाहिए, तो मेरी पत्नी का फोन आ गया, केन्या का घटना है, तो मेरी पत्नी का फोन आया, तो फोन अटेंड कीजिए, बोले अटेंड करने लायक नहीं है, उसको अटेंड नहीं करना ही ठीक है, क्योंकि मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं और उनको अटेंड करूंगा मैं, हो गया तेरे माइंड में एक भी नहीं जाएगा, वास्तविकता है। केवल मंगल आरती अटेंड करके देखे कोई व्यक्ति, चैलेंज है, आप 6 महीने में अपने आप को ऊपर पाएंगे, नहीं होगा तो मेरी मुंडी आपका जूती, हमारा तो अनुभव है भाई। लेकिन रेगुलर बीमार भी है ना, तो बहाना नहीं चलेगा बीमार का, बीमार होकर के भी साथ में पहले ही कंपारी छूट रहा है शरीर में, लेकिन खड़े हैं, एक दिन आएगा क्या आप उन बीमारी को, अगर बीमारी भी है ना, तो उन बीमारी को, बहुत बड़ा बीमारी को आप उसी बेड को देकर के उठ करके आ जाएंगे, वो बेड हिलेगा, डड 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 डड, आप मंगल आरती संसार डावा नलली ढलोक, हा, और वो बेड हिलेगा, यार ये तो बुखार देकर के गया हमको, यस। एक कैपेसिटी आ जाएगा, आप ट्रांसफर कर देंगे बेड को, लो आप रखो, मैं जरा जाके आता हूं, बाद में देखेंगे हम लोग, यस। अगर इस प्रकार है, बस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, साधन अपने आप होगा, सारा साधन मंगल आरती से फोर्स आता है, क्यों, भगवान चित्त में है, वो छोड़ेंगे कैसे, अरे ये तो मंगल आरती का है मेरे सामने, मेरे उन सेवक का गुणगान किया है ना, अन्यथा चक्रवर्ती ठाकुर ये साहस नहीं कर सकते थे दिखने का, आशीर्वाद है, 9वां श्लोक है, देखो क्या आशीर्वाद है, कैसे साहस जुटा सकते थे, उनको मालूम है केवल इसका गान करने से जाएंगे लोग, क्योंकि भगवान उनको छोड़ने वाले नहीं है, फिर बुखार है फिर भी माला जप करो, अपने आप होता चलेगा पीछे, तो बहुत आवश्यक है, साधना ठीक नहीं है, उनके दिमाग में ये विचार सब माया का विचार आ सकता है, अवकाश ही कहां है यार, साधक को कहां अवकाश है, ये तो जप माला करना है, उनके बाद में ये करना है, थोड़ा टाइम रहता है तो अपनी माला बढ़ा देता है, बोले 16 32, क्योंकि थोड़ा गैप रहा है, 32 चालू कर दो, गैप तो रखना ही नहीं, शेड्यूल इतना टाइट होना चाहिए कि एक भी गैप माया को देना नहीं चाहिए, कहीं से भी कोई विचार आए नहीं माइंड में। 32 हो गया तो बोलते फिर भी कुछ अवकाश, 64, कहां कमी है यार, बढ़ाते जाइए, दिक्कत कहां है, दिक्कत क्या, गैप ही नहीं देगी माया को, गैप मिलेगा ही नहीं 100%, तो गैप देते हैं, इसके कारण ये है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।